प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा। रोजबेल श्री गौर निताय प्रीचिंग सेंटर के भक्तों का स्वागत है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में मॉरिशस में 18 दिन का प्रोग्राम रखा गया था, तो आज भगवद गीता के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। कल हम गामवाय में भगवद गीता के 10वें अध्याय के चतुर्श्लोकी गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सबसे गुप्त ज्ञान आपको देता हूं। तो अर्जुन ने पूछा सबसे गुप्त ज्ञान क्या है? गुप्त किसको बोलते हैं? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, रहस्यमय। तो क्या गुप्त ज्ञान है भगवान? तो अर्जुन ने कहा गुप्त ज्ञान है भाव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, ये गुप्त ज्ञान है। मन मना भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कारो, ये गुप्त ज्ञान है। तो अर्जुन ने पूछा ये अगर गुप्त ज्ञान है तो आपके ही भक्त बने, ऐसी कौन सी विशेषता है आप में? तो भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विशेषताएं बताई। विभूति योग, ये मेरे चमत्कार हैं, आप नमस्कार करो। भगवान कहते हैं ये सब मेरे चमत्कार हैं, ये सूर्य सुबह उगता है ना, ये मेरे आदेश से उगता है। ये नदियां बहती हैं जो जल आपको पहुंचाती हैं, खेतों में पानी आता है और ये गन्ने पैदा होते हैं, ये सन चंद्रमा इनको रस देता है, ये मेरी शक्ति। लेकिन अर्जुन ये सब तुम क्यों जानकर क्या करोगे? तो मेरे एक अंश में ये सारा जगत स्थित है। लेकिन कम एक बात विशेष कह रहे थे कल के, भगवान ने अपनी विभूति जब बताई तो सबसे बड़ी विभूति क्या है भगवान की? 10वें अध्याय में भगवान ने 4 श्लोकों में गीता बताई है, चतुर्श्लोकी गीता, उसमें सबसे बड़ी भगवान की विभूति है भगवान का भक्त। भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण बताए हैं। भगवान का भक्त वो है जिसको देखकर भगवान याद आ जाए, जिसको देखोगे तो आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। तो सबसे बड़ी भगवान की विभूति भगवान का भक्त है, और ऐसे भक्तों का भगवान ने वर्णन किया है कि वो हमेशा अपने हृदय में मेरे चित्र को बसा के रखते हैं। मद चित्त मदगत प्राणा, अगर मैं उनके हृदय में नहीं रहूं तो वो प्राण दे देंगे, तो फिर जीते कैसे रहते हैं? बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को मेरी कथा बताते हैं। कथ्यंतश्च माम नित्यं, प्रतिदिन रोज मेरी कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। तुष्यंती च रमंती च, बड़े संतुष्ट रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। ऐसे जो भक्त मेरे हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि तो भगवान ने सबको दे दी है, रोटी पानी कमाने के लिए, अपना पेट गुजर के लिए, दो टाइम का भोजन निकाल के आ जाओ, इसकी बुद्धि तो भगवान ने दी है। ये तो गधे घोड़े कुत्ते को भी दी है, लेकिन बुद्धि योग भगवान ने सबको नहीं दिया है। बुद्धि योग भगवान कहते हैं मैं उसको देता हूं सततम के सततम तेषाम सतत युक्त युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम से मेरा भजन करता है और नित्य भजन करता है और खुलेआम भजन करता है, सरेआम बाजार के अंदर खड़े होके भगवान मेरा नाम जपता है, कहीं छुपा के नहीं जपता है, डरता नहीं है, ऐसे भक्त को मैं बुद्धि योग देता हूं। फिर भी अगर वो माया में चला जाए तो बोला फिर तो मैं उसको नहीं जाने दूंगा, एक बार पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। मैंने तो एक बार पूतना को पकड़ लिया था उसने कितना का छोड़ो, मैंने छोड़ा ही नहीं। मैं एक बार किसी को पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता ही नहीं हूं, ये मेरा नियम ही नहीं है। एक बार मेरे पास आ गया तो फिर उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान उसके अंदर से अंधकार कैसे दूर होगा? बोला ऐसे भक्त को मैं कभी देखता हूं कि उसके अंदर अभी फिर अंधकार हो गया है तो मुझे, मैं कांप जाता हूं। तेषाम एवानुकंपार्थम अनुकंपा, उसके ऊपर बहुत बड़ी करुणा आ जाती है। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा भक्त ऐसे कैसे कर रहा है। जैसे अर्जुन ने जब कहा कि सीदंति मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, मेरे सारे अंग स्थल हो गए हैं और मेरा रोम रोम से जो है गर्म हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, मेरा माथा घूम रहा है, ब्रह्मति चे मन, तो भगवान कांपने लगा, रहे ये क्या हुआ? अर्जुन मेरा मित्र है, मेरा सखा है और युद्ध भूमि में क्या कर रहा है? क्लेबियम मा समगम पारत, अरे तुम्हारे ऊपर ये कहां से मल निर्मलता। तो भगवान ने एकदम अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। भगवान कांप गए कि ये क्या है, मैं रथ के ऊपर बैठा हूं और ये कहता है मैं लड़ूंगा नहीं, क्या हो गया इसको? तो भगवान अपने भक्त को जब कमजोर देखता है, उसके अंदर थोड़ा सा दुर्बलता आती है, तो भगवान देख नहीं सकते, भगवान पूरी शक्ति के साथ उसको उठाते हैं, उसको उठा के अपने स्थान के ऊपर खड़ा कर देते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने स्थान के ऊपर खड़ा कर दिया। तेषान एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जतमः, उनकी अज्ञानता को मैं नाश कर देता हूं, ज्ञान उसके हृदय के अंदर मैं बैठा हूं, कहीं बाहर से मुझे आना नहीं पड़ता है। लेकिन उसके ऊपर इतनी मैं कृपा और दया करता हूं, उसका हृदय पवित्र कर देता हूं और फिर वो मेरा भजन करने लग जाता है। तो ऐसे भक्त मेरी बहुत बड़ी सबसे बड़ी विभूति है। इस दुनिया में भक्त बनना ही भगवान की सबसे बड़ी विभूति। और तब 11वें अध्याय में अर्जुन बोलने शुरू किया, मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ी कृपा की, अनुग्रह किया, मेरे को मुझे अपने अपना बालक बच्चा समझा, बेटा समझा, मित्र समझा, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, बहुत गुप्त से गुप्त कॉन्फिडेंशियल अध्यात्मिक जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है आपने मुझे, मोहो विगतो ममह, मेरा मोह चला गया है। भगवान मुस्कुराए, बोला मोह चला गया, फिर वापस आ गया तो मोह चला गया है ना, नाश तो नहीं हुआ है ना। भगवान ने कहा तो मोह चला गया है, फिर वापस आ जाएगा, फिर क्या करोगे? तभी तो भगवान ने, जब अर्जुन ने कहा है 18वें अध्याय में, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात अच्युता, तब भगवान ने कहा अब चिंता नहीं है, अब इसका मोह नाश हो गया। तो विगतो मोह चला गया है, भगवान ने बात को सुना नहीं। अर्जुन तो भगवान की प्रशंसा कर रहा था, क्यों कर रहा था प्रशंसा? उसको भगवान का विश्व रूप देखना था, मेरा मोह चला गया है, आपने बहुत बड़ी कृपा की है। त्वत कमल पत्राक्ष महात्मम, अब ये आप महात्मा है, आप कमल मुख है, आप जो कहा था 10वें अध्याय में कृपा करके मुझे दिखाओ, मैं आपका विश्वरूप देखना चाहता हूं। 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा तुम इन नेत्रों से मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें ददामी दिव्य चक्षु, तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, तो देखिए सारे देवता मुझ मेरे अंदर खड़े हुए हैं, इसमें तुम दो रूप देख लो, पहले किसी ने नहीं देखे आज से पहले। विश्वरूप तो मैंने मां यशोदा दो बार मां यशोदा को दिखाया था, जब मट्टी खाई तब भी मेरे मुंह में मां यशोदा ने विश्वरूप देखा था। अरे मैं मां का दूध पी रहा था, मैंने ऐसे मुंह खोला, जमाई लिया, यानिंग किया, तो भी उसके अंदर मां ने देख लिया था। अरे ये तो कौरवों को भी मैंने विश्वरूप तो मैं दुर्योधन के वहां हस्तनापुर में सभा में भी दिखाया था, लेकिन यहां मैं काल रूप दिखाने जा रहा हूं। विश्व रूप के साथ मैं काल रूप दिखाने जाता हूं कि कैसे ये सारे दोनों ओर खड़े हुए योद्धा मेरे काल रूप के द्वारा अभी चूर्ण हो रहे हैं, सब समाप्त हो रहे हैं। ये काल रूप मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया। अर्जुन तुम इस काल रूप को भी देख लो। यो पश्यमे योगम ऐश्वरम, ये मेरा योग और ऐश्वर्य है। ये केवल मैं आपको ऐश्वर्य नहीं दिखा रहा हूं, योग भी दिखा रहा हूं, ये मेरा चमत्कार है, देख लो। चूर्णतई उत्तम अंगी भीषम द्रोण करण, ये सब भगवान के मुख में अर्जुन को भस्म होते हुए दिखाई दिए। और भगवान ने कहा निमित मात्र भव सव्य साचन, मैंने सबको पहले ही मार दिया है, ये तो पहले ही मर चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। लोग कहेंगे अर्जुन ने जीता, तुम बाण चलाओ, प्राण मैं इसके निकाल देता हूं। भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते भीष्म देव कहता है भागवत में, कृष्ण ने जब उनकी ओर देखा तो शत्रुओं की सारी आयु को हर लिया, उनकी उम्र को हर लिया, उनको मार ही दिया, केवल दृष्टि से मार दिया। अर्जुन ने तो बाण चलाए केवल, लेकिन मारा क्यों इनको? बोला जिस दिन स्त्री के अपमान किया गया, द्रौपदी का अपमान किया गया, कौरव सभा में बालों से पकड़ा गया, कपड़े को खींचा गया, जहां औरत का, जहां स्त्री का, जहां माता का अपमान होता है, वहां जो उसको देखते हैं उसकी रक्षा नहीं करते हैं, वो भी अपने लिए मौत को बुलाते हैं, उनके लिए भी भगवान मृत्यु बन के आता है। तो भगवान ने कहा जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण को देखा और चुप करके बैठे, बोले भी नहीं, वो सब मृत्यु के भागी होंगे, और जो उनके पक्ष में आए हैं वो उनको भी मरना पड़ेगा। तो ये काल रूप दिखाया तो अर्जुन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और भयभीत भी हुआ। पहले तो ऐसे देखने लगा ये कौन है, पता नहीं, ये तो भाई मेरा दोस्त था, मेरे साथ बैठा था, अभी थोड़ी देर पहले तो हम सब घर से साथ आए, मेरे घोड़ों को हांक रहा था, अभी ये देखो ये शंकर है, ये इसमें ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा कमल के ऊपर बैठा हुआ है, ये गणेश है, ये वरुण है, ये आदित्य, रुद्र, आदित्य, वसव, सभी खड़े है। फिर भयभीत हो गया, जब काल रूप देखा तो बहुत भयभीत हो गया। अर्जुन हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए, मतलब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कैसे माफ करो? बोले जैसे बेटे को बाप करता है, जैसा मित्र को मित्र करता है, जैसे प्रेमी को प्रेमी करता है, ऐसे मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं तो आपको अपना मित्र समझ के कभी आपके साथ भोजन करते मजाक कर लेता था, कभी एक खाट के ऊपर दोनों बैठ के बातें कर लेते पलंग के ऊपर, अब मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका। भगवान पर क्या करूं? बोला आपका विष्णु का चार हाथ वाला रूप दिखा दो, चक्र हाथ में हो, गदा हाथ में हो, पद्म हाथ में हो, शंख हाथ में हो, शंख चक्र गदा वाला रूप दिखा दो। देखो ये दिखा दिया, और फिर भगवान ने कहा देखो ये विश्व रूप इससे पहले किसी को मैंने दिखाया नहीं है, और ये दान तप करने से नहीं दिखने को मिलता है, ये तो मेरी कृपा से मैंने आपको दिखा ही दिया है, अब तुम्हारा भय खत्म हो जाए, तुमने को विष्णु रूप भी दिखा दिया, अब तुम तो ठीक हो ना। और उसके बाद संजय बोलने लगता है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम सुंदर रूप में जैसे खड़े थे रथ के ऊपर, उसी में वापस खड़े हो गए। ये कहता है स्वकम रूपम दर्श्यामास पार्थाय, स्वकम अपने स्वयं के रूप को पार्थ को अर्जुन ने को भगवान श्री कृष्ण ने दुखाया। संजय ये कह के पूरा किया तो अर्जुन बोलने शुरू किया, इमम सोमयम मानुषम रूपम जनार्दन, हे जनार्दन आपका ये मनुष्य जैसा रूप है ना, ये चंद्रमा की तरह बहुत शीतल है, बहुत सौम्य है, इसको देखने से अब मेरा चित्त शांत हो गया है, अब मुझे अब कोई भय नहीं रह गया। तब भगवान ने कहा ये जो रूप तुम मेरा अभी देख रहे हो, जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं इस वक्त कृष्ण, इसको देखने के लिए देवता भी कांक्षित देखने को लिए लालायत रहते हैं। वो ब्रह्मा जी देखने को आया था, उसको पता नहीं लगा कि मैं भगवान हूं, जब बच्चों के साथ में खा रहा था भोजन, वो बछड़े मेरे चुरा के चला गया था, मेरे ग्वाल बाल चुरा के चला गया था, वो इस रूप को देखने के लिए लालायत था, वो समझ नहीं पाया कि मैं कौन हूं। तो देवता देखने आते हैं तो पहचान नहीं सकते हैं। ये भगवान भोलेनाथ एक बार मेरी माँ के घर पे आया था नंदगांव में, दरवाजा खटखटाया, माँ ने कहा बोलो बाबा क्या चाहिए, बोला तेरे बच्चे का दर्शन करूंगा। माने का महाराज आपको देख के मेरा बच्चा डरेगा, ये सांप इधर है, इतने बड़े बड़े बाल हैं, त्रिशूल हाथ में, नहीं 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 नहीं। तो शंकर जी जब जाके बैठ गए थोड़ा दूर, 1 किलोमीटर दूर नंदगांव से, कृष्ण घर में रोने लगा, इतना जोर से रोया कि सब गोपियां इकट्ठी हो गई, अरे यशोदा ये चुप नहीं कर रहा है, क्या बात है, कोई घर में आया, इसको नजर लग गया। बोला आया तो घर में, इसका पिता आया, चाचा आया, ताऊ आया, लेकिन एक बाबा भी आया था। बोला बाबा को बुला के आओ। लोग बुला के आए, चल रे बाबा नंद भवन में, शंकर बाबा नंद भवन में चलो, काम क्या है, यशोदा मैया बुला रही है, काम करना क्या है, कि वो वहां के लाला को नजर लगी है, उसके बच्चे को नजर लग गई है, रो रहा है, तो पे राई लून कराए, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हाथ से वो मस्टर्ड सीड और नमक को ऐसे करके फेंकेगी तब ये बच्चा रोना बंद करेगा। शंकर जी आया घर, आया शंकर जी को देखा घर में आते हुए तो कृष्ण चुप कर दिया। माने बोला अब चुप हो गया, अब जाओ जैसे जाए बार फिर रोना शुरू कर दे। तो माने ये कैसे बाबा चुप करेगा, बोला इसका चरण है ना ये मेरे को दो, मेरे माथे पे लगाओ। यशोदा बोले नहीं ये तो सांप इधर कैसे बच्चे को दूंगी, नहीं दूंगी। सब गोपियां बोले नहीं 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 दे दो यशोदा। तब सब कहने लगा रहे रे बाबा नंद भवन में। अब बाबा भोलेनाथ आप इधर ही रहो, जाओ मत, जब जब मेरा लाला रोए तब तब दर्शन दो, जब बच्चा रोए तब दर्शन देना। जैसे जैसे भगवान झुंझुना है बच्चा रोएगा तब ये जूजू बजेगा। भगवान शंकर को उधर अभी नंदगांव में भगवान शंकर का मंदिर है, उसका नाम ही है नंदेश्वर महादेव, अंदर कृष्ण बलराम यशोदानंद है। तब भगवान ने कहा मैं इधर रहूंगा दो शर्त के ऊपर। बोला शर्त क्या है बोलो। बोला पहला भगवान को अभिषेक करने के बाद हमारे ऊपर जल जल चढ़ाना, और भगवान को भोग लगे तो प्रसाद हमको दोगे तो हम रहेंगे। अभी भी नंदगांव में भगवान का सुबह अभिषेक होता है और नंदेश्वर महादेव पे जल चढ़ता है, भगवान को भोग लग के पहला प्रसाद भगवान शंकर को चढ़ता है। तो ऐसे इंद्र को परेशानी हो गई, वो भी भगवान को पहचान नहीं सका, और ऊपर से वर्षा करना, भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया। वो वरुण देव नंद बाबा को पकड़ के लेके चला गया, और नंद बाबा ऐसे बैठा है वरुण लोक में, कृष्ण अंदर आया, वरुण दंडवत कर रहा है। नंद बोला ये तो मेरे बेटे को दंडवत कर रहा है, मेरे बाप को बांध के बैठा है, ये कैसा है? तो ये सब देवता भी भगवान को समझ नहीं आते। तब भगवान ने कहा मेरे को अगर समझना है अनन्या भक्त्या शक भक्त्या तो अनन्य शक्या, भक्त्या तो अनन्य शक्या, ये किसके लिए हो सकना, किसके लिए हो सकता है, कौन इसको देख सकता है, जो अनन्य भक्त है और किसी का नहीं, न अन्य और किसी का नहीं, जो मेरा भक्त है वो केवल इसको समझ सकता है। भक्त्या तो अनन्य शक्या एवं विदो अर्जुन, अर्जुन ऐसे केवल मेरा भक्त ही मुझे देख सकता है। क्या देख सकता है भगवान, जान सकता है, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतप, वो मेरे बारे में जान भी सकता है, मुझे देख भी सकता है और मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। तीन चीजें भगवान ने शब्द का, ज्ञातुम दृष्टुम परवेष्टुम। ज्ञातुम ज्ञानियों का लक्षण है, भगवान को जानना चाहते हैं। दृष्टुम योगियों का लक्ष्य है, भगवान को देखना चाहते हैं। परवेष्टुम का मतलब आप एक आदमी हैं राज, आप यहां के प्राइम मिनिस्टर को बाहर देख सकते हैं, कार में जाते हुए देख सकते हैं, कहीं लेक्चर देता है देख सकते हैं, लेकिन उसके घर में तो प्रवेश नहीं कर सकते, सब लोग उसके घर में तो नहीं जा सकते। घर में जाके उसके साथ बैठ के तो बात करना बहुत कम लोग जाएंगे, सब लोग तो नहीं जा सकते। आप लोग में कितने लोग गए हैं प्राइम मिनिस्टर घर में, कितने लोग गए हैं यहाँ मॉरिशस में, कितने लोग उसके घर पे गए हैं मिलने के लिए, एक दो लोग ज्यादा से वन और टू, लेकिन देखा सबने है कि नहीं, सबने देखा है ना, फोटो देखा है उसका, जानते सब हो उसको, लेकिन घर में बहुत कम जाते हैं ना। तो भक्त भगवान के घर में प्रवेश करता है, उसको जानता भी है, उसको देखता भी है, लेकिन उसके घर में प्रवेश भी करता है। घर में प्रवेश करने का मतलब उसको उसके साथ संबंध स्थापित करता है। देखो संबंध ही जो होगा वही घर में आ सकता है, एक नहीं घर में आ सकता है, जो अपना होगा वही घर में आएगा। तो भगवान के साथ भगवान कहते हैं मेरा अनन्य भक्त मेरे घर में आता है और मेरे साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता। फिर भगवान ने भक्ति का सूत्र बताया, भक्ति के सूत्र में भगवान ने पांच बातें बताई। इसके बाद ये अंतिम श्लोक है ग्यारहवें अध्याय, मत कर्म किरण मद भक्तो मत संग वर्जित। तीन चीजें बताई भगवान ने अपने लिए, मत कर्म, कर्म मेरे लिए करो, काम सब मेरे लिए करो। आप देख लो आप किसके लिए काम करते हो, घर के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, भगवान कहते काम सब मेरे लिए करो। मत परमो, मुझे ही परम समझो, मेरे मेरा ही आश्रय लो, मुझे ही सबसे ज्यादा आपके जीवन में, परम का मतलब होता है सर्व उत्कृष्ट चीज, सबसे उत्तम चीज मेरे को ही समझो, आपके जीवन का लक्ष्य मुझे बनाओ, मद भक्त और मेरे भक्त बनो। इसका अर्थ ये है शरीर से काम मेरे लिए करो, मन से मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, बुद्धि से मेरे ऊपर विश्वास करो और मेरे को ही अपना आधार मानो और दिल से मुझे प्रेम करो, भक्त बनो, मुझे मुझसे प्रेम करो। संग वर्जित है, दो चीजें संसार के लिए बोलिए, संग वर्जित है, संसार का संग त्याग दो। फिर क्या सबसे झगड़ा करे, बोलो ना, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से शत्रुता मत करना, वैर किसी से मत करना, डोंट बी एनिमी ऑफ एनीबॉडी, किसी से वैर मत करना, लेकिन किसी को चपकना मत। जैसे संसार का संग त्यागने का अर्थ क्या है, आप रोड पे जाते हैं ना, कितने लोगों को रोज देखते हैं, आंखें बंद करके चलते हैं, खुली आंखों से चलते हैं, मॉरिशस में आंखें बंद करके चलते हैं, खुली आंखों से चलते हैं ना, तो कितने लोग देखते हैं, हजारों लोग रोज दिखते हैं, गाड़ियां मोटर दिखती है, लेकिन अपना कोई पहचानने वाले की गाड़ी दिखती है तो दूर से आंख उसको चपक जाती है, ये हमारी गाड़ी जा रही है, और कोई पुरानी शक्ल दिखी हुई है, ओ ये वो जा रहा है, तो ये हो गया चपकना। देखने की मना नहीं है, चपकने की मना है। चपकोगे तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहचानो, जानो, खाओ पियो, लेकिन चपको मत। मधुमक्खी मधु बनाती है, देखा है, फिर उसको खाने के लिए बैठती है, बैठी ना तो पांव अंदर चपक गया तो मर के जान छुड़ाएगी, लेकिन बना के दूसरों को खिलाती है तो सब मजा से खाते हैं, लेकिन स्वयं अंदर पांव उसका चपका नहीं, फंसी नहीं, तो फिर उड़ नहीं पाएगी। तो हम चपक गए तो फिर उड़ नहीं पाएंगे। तो संग वर्जित का मतलब उसमें चपको मत। कानों से 100 बातें सुनते हैं, कितना बातें लोग कर रहे सुनते, लेकिन कोई हमारा नाम ले तो क्या कह रहा है, आप चपक गए ना, इसको चपकना बोलते हैं। चपको मत, कोई अच्छाई करता है उसमें मत चपको, कोई बुराई करता है तो उसके उसमें भी मत चपको। बुराई में कैसे चपकते हम, सारा दिन उसको उठा के दिल में उठते, मिलेगा मेरे को, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मैं बिल्कुल रहने नहीं दूंगा। अरे जिसको तुम रहने देना नहीं चाहते हो, जिसको तुम देखना नहीं चाहते हो, उसको तुम दिल में क्यों उठा के घूम रहे हो, जिसको तुम शक्ल से देखने को तैयार नहीं हो, इतना तुम उसे नफरत करते हो, इतना बुरा उसको मानते हो, और सारा दिन तुमने उसी को दिल में बिठा रखा, निकाल के फेंक दो ना उसको। ये संग वर्जित का अर्थ है, उसको मत पकड़ के बैठो। लोग दुखी हैं पुरानी बातों को याद कर, पहले हमारा ये हो गया, अरे हो गया, खत्म हो गया, अब क्यों उठा के उसमें बैठे हो। भूत की चिंता, सबको भूत लगा हुआ है। एक आदमी को बोला मंत्री बनो, बोला मैं नहीं बनूंगा, बोला क्यों, बोला उतरूंगा फिर मेरे को भूत लगेगा, बोलेंगे भूतपूर्व मंत्री, तो मैं भूत मेरे को नहीं लगना चाहिए। भूतपूर्व मंत्री बोलते हैं ना हिंदुस्तान में, जो मंत्री अपनी सीट से उतर जाए, भूतपूर्व, इसको भूत लग गया उसके बाद, तो भूत लग जाता है उनको। तो भूत को याद करने वाले दुखी होते और भविष्य की चिंता करने वाले दुखी होते हैं, ऐसे हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसे होगा तो फिर, अरे होने तो दो। एक घर में नीचे मालिक मकान रहता था, ऊपर किराएदार रहते थे, बड़े अच्छे लोग थे। एक दिन झगड़ा चल रहा है ऊपर बहुत ज्यादा, घर वाले ने कहा भाई पूछो तो सही क्यों झगड़ा कर रहे, जब गए पूछा कि भाई बात क्या है, तो बाप बोलता है मैंने इसको कहा कि लड़के को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, ये मानती नहीं है, बोला ये कहती इंजीनियर बनाऊंगा, तो आपस में हमारा इसलिए झगड़ा हो रहा है। तो मालिक मकान का लड़के को बुलाओ, पूछो वो क्या बनना चाहता है, बोला उसको जन्म ही नहीं हुआ है, वो पैदा ही नहीं हुआ है, लड़का है ही नहीं, और घर में झगड़ा हो रहा है कि ये इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर। अरे जन्म तो लेने दो, तो इतना भविष्य का झमेला। तो ये दुनिया में दुख पुरानी बातों को, अरे उसने मुझे उस दिन ये कहा था ना, अभी तक मैं उसको दुखी हूं, भाई निकालो फेंको, उसको कहा था, गया वो मर गया, कथा समाप्त हुई, अब काहे के लिए उसको पकड़ के बैठे। लर्न टू लिव इन प्रेजेंस, इस वक्त में अच्छे से अच्छा काम क्या कर सकता हूं, ये मोमेंट में प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करूं। जो एक आदमी था उसके पास, एक अभी यहां डॉक्टर ने मेरे को पूछा था, डॉक्टर करके कभी कभी बाहर 30 मरीज मुझे देखने होते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूं, 20 के बाद फिर सबको टाइम नहीं दे पाता हूं, आप एक वक्त में एक ही मरीज को देखो। एक आदमी 100 टेस्ट रोज करनी होती थी, 100 यूरिन टेस्ट रोज करने, उसने पूछा तुम्हारे को तकलीफ नहीं, नहीं, बोला मैं एक जो सामने उसी को देखता हूं, उसी को ठीक तरह करता हूं, जब दूसरी आएगी तब दूसरी की बात करेंगे। तो ये दूसरा बाहर देख लिया तो दिल कांपने लगा। आप एक अपना ठीक से वो जो प्रेजेंट टाइम है जो आपके हाथ में काम है उसको ठीक तरह से कर लो। अब कृष्ण अर्जुन को कहता अभी तुम्हारे को युद्ध करना है ये ठीक कर लो, ये रोना धोना बाद में करेंगे, करना होगा तो ये भी करेंगे, इसका टाइम आया तब ये भी करेंगे, लेकिन अब ये काम नहीं करना है, अब प्रेजेंट में जीना सीखो। तो भगवान ने गीता का ये सूत्र बताया भक्ति का, भक्ति वो तब 12वां अध्याय शुरू होता है भक्ति योग, जिसमें भगवान कहता है मैं प्रेम उनसे करता हूं जिसमें जिनमें ये भक्त के लक्षण होते। भगवान ने भक्तों के लक्षण बताए, अद्वैष्ट सर्वभूतानाम, जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है, मैत्रीय द्वेष नहीं करता है, न्यूट्रल नहीं, मैत्रीय सबसे प्रेम करता है, मित्रता करता है, करुणा बहुत दयालु है, अद्वैष्ट सर्वभूतानाम मैत्र करुणा एवच निर्ममो, मेरा कुछ है इसको नहीं पकड़ के बैठता है, निरअहंकार कुछ है उसका अहंकार भी नहीं करता है, सम दुख सुख, दुख आए और सुख आए दोनों में बराबर है, संतुष्ट संतुष्ट है, क्षमी क्षमाशील है, दूसरों के गलती को माफ कर देता है, समय भक्त प्रिय है, ऐसा मुझे भक्त प्रिय है। तो ये गुण जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। तो इस दुनिया में हम किसी का प्रिय बनना चाहते हैं उसके लिए कितना काम करते हैं। मालिक का प्रिय बनना चाहता है सेवक तो बड़ा दिन रात सेवा करता है ना कि मेरा मालिक खुश हो जाएगा तो मेरे को बोनस तनख्वाह दे देगा, दिसंबर में डबल तनख्वाह मिलती है मॉरिशस के लोगों को, सब डबल डबल खर्चा करने जाते हैं ना, दिसंबर डबल तनख्वाह का महीना है ना, तो मालिक को खुश करना होता है। तो जैसे मालिक को खुश करना है ऐसे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करेगा तो हमको कुछ लाभ देगा, लेकिन भगवान आपसे प्रेम करने को तैयार है लेकिन उसके लिए भी कुछ गुण पैदा करने पड़ेंगे। वैसे तो भगवान सबसे प्रेम करता है लेकिन फिर भी गुण पैदा करने पड़ेंगे, ये भगवान ने मर्यादा बना रखी है। और भक्ति के लिए भक्ति योग का अध्याय शुरू होता है श्रद्धा से, श्रद्धा और अंत भी होता है श्रद्धा से। ये तो धर्मामृतम यथोक्तम परुपास्ते श्रद्धानामत परम भक्तास्ते अति मे प्रिय, सबसे अति प्रिय मुझे वो भक्त है जो श्रद्धा करता है, सामने मुझे देखता है वो नहीं, जो बगैर देखे मेरे ऊपर श्रद्धा करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था, कृष्ण के बारे में सुना था वो संत महात्माओं से और विश्वास करके कृष्ण को अपनाने के लिए, तो कृष्ण उसके लिए द्वारका से चला आया और सब राजाओं से झगड़ा करके और रुक्मणी को उठा के लेके चला गया। तो श्रद्धा से जो भगवान की भक्ति करता है, देखा नहीं है, श्रद्धा को बहुत बड़ा मान दिया है। भगवद गीता और भक्ति योग का अर्धा अध्याय शुरू भी श्रद्धा से होता है, मैया आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपास श्रद्धयो परोपेतास श्रद्धयो, जिसको श्रद्धा है। तो श्रद्धा भक्ति की जननी है, भक्ति होगी तब जब हमारी श्रद्धा होगी, और श्रद्धा भगवान के ऊपर तब होगी जब भगवान भक्तों का संग करेंगे, क्योंकि भक्तों के संग में ये पता लगेगा कि भक्त क्यों सुखी है। तो फिर हम भक्तों के संग में बैठेंगे तो भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, भक्त के संग से भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए भक्तों का संग करोगे तो भक्ति में आगे बढ़ोगे। हरे कृष्णा, आज की कथा को यहाँ समाप्त करेंगे, 9 बजे हम निकलेंगे, तब हमको टाइम से पहुँचना पड़ेगा एयरपोर्ट। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन भक्त बनिए, जीवन को सफल कीजिए, ये 30-40 साल जिंदगी के आपको सिर्फ जीने के लिए मिलते हैं, 20-25 साल सोने में चले जाते हैं, 5 साल बचपन में चले जाए, बुढ़ापे के 5-7 साल किसी काम के नहीं रह जाते हैं, कानों से सुनोगे नहीं, आंखों से देखोगे नहीं, दांत मुंह से चबा नहीं सकोगे, तब तो कुछ कर नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, तब तो लाठी हाथ में उठानी पड़ेगी, कोई बात देखेगा भी नहीं आपकी ओर, मुंह ऐसे पिचक जाएगा और कोई देखेगा तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो सबका हाल होने वाला है। 40-41 साल मुश्किल से जीने को मिलते हैं, वो अच्छी तरह से जी लो भगवान की भक्ति करके, ताकि हमेशा के लिए भगवान के संग में सुख से रहो। थोड़ी सी तपस्या कर लो, ये जिंदगी भोग के लिए नहीं है, तपस्या के लिए है। तपोदिव्यम पुत्र का ऋषभदेव महाराज अपने 100 पुत्रों को, भरत महाराज उनका पुत्र है जिसके नाम से ये भारतवर्ष है, उनको बिठा के समाज के अंदर सारे ऋषि मुनियों के समाज में खुली बाजार में बैठ के कहा, बेटा को मैं ये शिक्षा दे रहा हूं आप सुन लो, मेरे जाने के बाद बेटा इसके ऊपर नहीं चले तो बोलना तुम्हारी बाप की बात क्यों नहीं मानते हो। बेटा तपस्या करो, दिव्य सुख इससे मिलेगा, भोग दुख ही देगा, भोग रोग ही देगा, तपस्या से दिव्य सुख मिलेगा, ये भगवान के वचन है। हम सब भोग के पीछे भाग रहे हैं और रोग को बुला रहे हैं। सिगरेट पीने का जिसको भोग है वो कैंसर को बुला रहा है, टीबी को बुला रहा है, शराब पीने का रोग है वो लिवर के फेल्यूर को बुला रहा है, लिवर समाप्त हो जाएगा और खाने पीने के लिए स्टमक किसी काम का नहीं रहेगा। और जो मांस खाने के लिए भोग में लगा हुआ है वो कोलान की कैंसर को बुला रहा है कि कल हमारे को कैंसर होगी, तो रोग को ही सारे बुला रहे हैं। भोग रोग देगा और तप दिव्य सुख देगा। ये महात्मा साधु लोग तपस्या करते हैं इसलिए दिव्य सुख में रहते हैं, कुछ भी नहीं है फिर भी आनंद में रहते हैं, और लोगों के पास सब कुछ है फिर भी दुखी है। एक सेठ, बहुत बड़े सेठ के घर में साधु गया, साधु के लिए हलवा बनाया, पूरी बनाई, खीर बनाई। सेठ जी भोजन करने लगे तो एक सूखा हुआ चपाटी आया, ऐसे डबल रोटी की तरह फुला हुआ। महाराज ने बोला आप थोड़ा सा खीर खाइए ना। बोला नहीं मैं खा नहीं सकता। बोला क्यों? बोला शुगर की बीमारी है। तो घी तो लगाओ चपुट। नहीं, ब्लड प्रेशर, घी नहीं खा सकता। तो दूसरों को खिलाता है, घर में नौकर है वो घी खाता है, खीर खाता है, लेकिन ये सूखा फुलका खाता है, एक सूखी चपाटी खाता है, थोड़ा सा ऐसे पानी जैसी दाल पीता है, फिर तो जहर खा के मरो, ऐसे अच्छा है, कमा किसके लिए रहा है? कमा रहा है सारा और खा कुछ नहीं सकता है, खा दूसरे रहे, तो इसका इस कमाने का क्या मतलब है? ये संत एक ने लिखा है अपने जीवन में, मैं किसी घर में गया, मैंने ऐसे देखा, मुझे आश्चर्य लगा, खा भी नहीं सकता है कुछ। तो भोग नहीं, तपस्या करो। और ये थोड़ी देर बैठ के भगवान का नाम जपना, ये बड़े से बड़ी तपस्या है। सुबह सवेले 4 बजे उठना, ये बड़े से बड़ी तपस्या है। भगवान का दर्शन करने पहले आना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। उठ के पहले भगवान का दर्शन करने के लिए जाएं और बैठ के भगवान को पहले याद करें, तो भगवान हमको कभी नहीं भूलेगा, भगवान फिर हमको कभी नहीं भूलेगा। ये तपस्या कर लो, फिर आपके 30-40 साल बड़े आनंद से जीवन गुजर जाएगा। नहीं तो सब बाकी मरते जा रहे हैं, आप भी मरते जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सारे जा ही रहे हैं, कोई बच जाए वो बहुत बड़ी बात है। नदी बहती है ना, ये रिविया आपके यहां बढ़ती है ना, पिचित रिविया और ग्रान रिविया, उसमें कचरा भी बह जाता है, नीचे समुद्र में जाता है ना, कचरा डालो वो भी चला जाएगा। लेकिन उल्टा कोई पहाड़ के ऊपर, रिवर के ऊपर जाते हुए देखा है? जो ऊपर जाता है वो वीर पुरुष है, समुद्र में तो कचरा भी चला जाएगा। तो दुनिया ऐसे बहती है, उधर मत जाओ, दुनिया के उल्टे तरफ जाओ, वो सही रास्ता है। दुनिया सारी भोग में जा रही है, आप योग में जाओ, वो रोग में जा रही है। आप भगवान को प्राप्त करने के लिए योग का मार्ग अपनाओ, भोग को त्यागो, योग का मार्ग अपनाओ। ये मौका मत गंवाओ मानव जन्म का, फिर नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। ये सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन बावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए दुर्लभ है ये ग्रंथ सब, कहते हैं आपको मानव शरीर मिल गया है। भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तरौ ए बाबा सिंधुरे। दुर्लभ मानव जन्म, और उस मानव जन्म में सबसे दुर्लभ सत्संग है, और ये सत्संग भव सागर तार कर तरने का एक ही रास्ता है। तो सत्संग में भगवान का भजन करो, मन को कृष्ण भक्ति में लगाओ, ये मानव जन्म को सफल करो, कोई काम नहीं आएगा। आज तक किसी को कोई काम नहीं आया, सब यहीं रह जाएंगे, न पैसा जाएगा, न मोटर जाएगी, न कार जाएगी, न जमीन जाएगा, न दुकान जाएगा, न मकान जाएगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा, ये भी यहीं पड़ा होगा मुट्ठी भर खाक बन के, जो अच्छा जीवन में काम किया है वही साथ जाएगा। इसलिए अच्छा काम करके, भजन करके ये जन्म सफल कर लो, मूर्खों की तरह मौका मत गंवाओ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की
जय।
ग्रंथ राज भगवत गीता की
जय।
हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच आप सबका। म्योसी बाकू।